एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पहला मेजबान।
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान। आज हम एक बहुत ही अहम और सोचने पर मजबूर करने वाले विषय पर बात करने वाले हैं।
हाँ, विषय है पशु अधिकार, और ये ऐसा मुद्दा है जिस पर अक्सर काफी गर्मा गर्म बहसें होती हैं, भावनाएं जुड़ी होती हैं।
बिल्कुल। तो इसी को समझने के लिए हम आज दार्शनिक मार्क रॉलिंस की किताब है एनिमल राइट्स, उसके मुख्य विचारों को खंगालेंगे।
और ये किताब महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ भावुक अपील नहीं करती, ये तर्क और न्याय के आधार पर पशु अधिकारों की बात करती है।
हाँ, और देखिए ना, ये विषय आज कितना प्रासंगिक है। हम रोज सुनते हैं फैक्ट्री फार्मिंग है, जानवरों पर प्रयोग हो रहे हैं।
हाँ, या शहरों में भी जो आवारा पशु हैं उनके साथ क्या सुलूक हो, ये सब बातें।
बिल्कुल। तो रॉलिंस की ये किताब हमें एक तरह का नैतिक ढांचा देती है इन सवालों से निपटने के लिए।
हाँ, उनका नजरिया थोड़ा हटके है। जहां लोग कहते हैं कि जानवरों पर दया करो, रॉलिंस पूछते हैं, भाई ये दया का मामला है या न्याय का?
क्या उनके भी कुछ अधिकार होने चाहिए जैसे हम इंसानों के लिए मानते हैं?
सही। चलिए तो फिर इसी की पड़ताल शुरू करते हैं।
तो पहले ये समझ लें कि मार्क रॉलिंस हैं कौन, जिनकी किताब पर हम बात कर रहे हैं।
मार्क रॉलिंस एक वेल्श दार्शनिक हैं। आजकल वो अमेरिका में मियामी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं।
और उनकी विशेषज्ञता क्या है?
मुख्य रूप से नैतिकता, चेतना का दर्शन और जाहिर है पशु अधिकारों का दर्शन, इसी पर उन्होंने काफी काम किया है।
लेकिन एक दिलचस्प बात है उनके बारे में, वो सिर्फ एकेडमिक दार्शनिक नहीं है।
हाँ, ये बात सही है।
उन्होंने असल में 11 साल एक भेड़िये के साथ गुजारे हैं। ब्रेनन नाम था उसका।
ओह, भेड़िया साथ में।
हाँ, और इस अनुभव पर उन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध किताब भी लिखी, द फिलोसोफर एंड द वुल्फ।
तो जाहिर है इस अनुभव ने उन्हें जानवरों की चेतना, उनके व्यवहार को बहुत करीब से समझने का मौका दिया होगा।
बिल्कुल। और शायद यही उनके अकादमिक काम में भी एक अलग गहराई लाता है। वो सिर्फ थ्योरी नहीं, एक प्रैक्टिकल अनुभव से भी बात कर रहे हैं।
सही कहा। तो पशु अधिकारों पर उनका नजरिया क्या है, वो कैसे अलग है दूसरों से?
देखिए, कई विचारक हैं जैसे पीटर सिंगर, जो उपयोगितावाद के नजरिए से बात करते हैं।
उपयोगितावाद यानी यूटिलिटेरियनिज्म।
हाँ,
कि ज्यादा से ज्यादा सुख हो, कम से कम दुख हो।
हाँ, सबके लिए, इंसान हो या जानवर। लेकिन रॉलिंस थोड़ा अलग रास्ता लेते हैं। वो सामाजिक अनुबंध सिद्धांत यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं।
अच्छा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जैसे
जॉन रॉल्स वगैरह।
बिल्कुल, खासकर जॉन रॉल्स के न्याय के विचारों का। रॉलिंस मानते हैं कि पशु अधिकार सिर्फ तरस या करुणा का विषय नहीं है,
बल्कि ये न्याय और निष्पक्षता की बुनियादी मांग है। और यही बात उनके तर्क को बहुत ठोस और शक्तिशाली बनाती है।
तो अब आते हैं उनकी किताब एनिमल राइट्स पर। इसका मूल विचार क्या है, क्या कहती है किताब?
ये किताब आप कह सकते हैं पशु अधिकारों के पीछे जो दर्शन है उसको समझने के लिए एक बेहतरीन गाइड है।
भाषा कैसी है, बहुत एकेडमिक तो नहीं?
नहीं, भाषा सरल रखने की कोशिश की गई है ताकि आम पाठक भी समझ सके, पर विचार काफी गहरे हैं।
और किताब का केंद्रीय तर्क?
केंद्रीय तर्क ये है कि जानवरों को भी बुनियादी नैतिक अधिकार मिलने चाहिए।
और क्यों मिलने चाहिए, किस आधार पर?
आधार है संवेदनशीलता, सेंटियंस, यानी सुख और दुख महसूस करने की क्षमता। अगर कोई जीव दर्द महसूस कर सकता है, अच्छा महसूस कर सकता है, तो उसके अपने हित है, उसकी अपनी भलाई है जो उसके लिए मायने रखती है।
तो ये जो ट्रेडिशनल सोच है कि सिर्फ इंसान ही नैतिक दायरे में आते हैं क्योंकि हम तर्क कर सकते हैं, भाषा बोल सकते हैं।
हाँ, रॉलिंस उसी को चुनौती देते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ अपनी प्रजाति यानी इंसानों को नैतिक समुदाय में रखना और बाकियों को बाहर कर देना, वो भी बिना किसी ठोस नैतिक कारण के।
ये तो एक तरह का पक्षपात हुआ।
बिल्कुल, इसी को वो प्रजातिवाद या स्पीशीज़म कहते हैं। और वो तर्क देते हैं कि ये उतना ही अन्यायपूर्ण और अतार्किक है जितना नस्ल या लिंग के आधार पर भेदभाव करना।
इसमें एक और बात वो समझाते हैं शायद, पशु कल्याण और पशु अधिकार में फर्क।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। पशु कल्याण एनिमल वेलफेयर का मतलब हो सकता है कि ठीक है, जानवरों का इस्तेमाल करो, लेकिन कोशिश करो कि उन्हें कम दुख हो।
जैसे शायद पिंजरा थोड़ा बड़ा कर दिया,
या मारने का तरीका कम दर्दनाक हो।
हाँ, कुछ वैसा।
लेकिन पशु अधिकार एनिमल राइट्स का सवाल इससे कहीं ज्यादा बुनियादी है। वो ये पूछता है कि क्या हमें उन्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने का हक है भी?
अच्छा,
मतलब क्या उन्हें वस्तु की तरह इस्तेमाल करना ही अपने आप में गलत नहीं है?
ये तो सोचने वाली बात है। तो फिर रॉलिंस अपने इस तर्क को मजबूत कैसे करते हैं, क्या दलीलें देते हैं?
हाँ, यहीं पर उनका विश्लेषण गहरा होता है। वो शुरू करते हैं इस सवाल से कि नैतिक रूप से कौन मायने रखता है, कौन आता है नैतिक दायरे में।
और जवाब?
जवाब है हर वो प्राणी जो संवेदनशील है, जो महसूस कर सकता है। वो कहते हैं कि तर्क क्षमता या भाषा जैसी चीजें सही पैमाना नहीं है।
पर क्यों नहीं? आमतौर पर तो यही माना जाता है ना कि इंसान इसलिए खास है।
यहाँ रॉलिंस एक बहुत मशहूर दार्शनिक तर्क का इस्तेमाल करते हैं। उसे कहते हैं मामूली मामलों का तर्क या आर्ग्यूमेंट फ्रॉम मार्जिनल केसेस।
अच्छा, वो क्या है?
वो कहते हैं, मान लीजिए कि नैतिक अधिकार के लिए तर्क क्षमता या भाषा जरूरी है, ठीक, तो फिर उन इंसानों का क्या जिनके पास ये क्षमताएं नहीं है, जैसे नवजात शिशु या वो लोग जिन्हें गंभीर मानसिक विकलांगता है।
हाँ, ये तो मुश्किल सवाल है। हम तो मानते हैं कि उनके भी अधिकार हैं।
बिल्कुल, हम मानते हैं कि उनके अधिकार हैं, हमें उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उनकी परवाह करनी चाहिए।
सही है।
तो रॉलिंस पूछते हैं, अगर हम इन मामूली इंसानों को जिनमें वो खास क्षमताएं नहीं है उन्हें नैतिक अधिकार देते हैं, तो फिर उन जानवरों को क्यों नहीं देते जिनमें कम से कम उतनी या शायद उनसे ज्यादा संवेदनशीलता या चेतना है,
जैसे कि कोई चिंपैंजी हो गया या डॉल्फिन।
हाँ, या यहाँ तक कि सुअर या कुत्ते भी, वो भी महसूस करते हैं, सीखते हैं। तो अगर इंसानों के लिए संवेदनशीलता काफी है तो जानवरों के लिए क्यों नहीं? ये दोहरा मापदंड क्यों रखा है हमने?
बात तो सही है, ये प्रजातिवाद के विचार पर सीधी चोट है। अच्छा, तो फिर वो उपयोगितावाद के बारे में क्या कहते हैं, पीटर सिंगर वगैरह?
वो मानते हैं कि सिंगर जैसे उपयोगितावादी विचारकों ने बहुत जरूरी काम किया है। उन्होंने प्रजातिवाद की आलोचना की, जानवरों की पीड़ा पर ध्यान दिलाया।
हाँ, जैसे फैक्ट्री फार्मिंग वगैरह के मुद्दे उठाए।
उसमें उपयोगितावाद बहुत प्रभावी रहा है, लेकिन रॉलिंस को लगता है कि इसकी भी एक सीमा है।
क्या सीमा? दुख कम करना तो अच्छी बात है।
उपयोगितावाद का अंतिम लक्ष्य होता है कुल मिलाकर भलाई को बढ़ाना। इसमें सैद्धांतिक रूप से ये संभव है कि किसी एक व्यक्ति या जानवर के हितों को बड़े अच्छे के लिए कुर्बान कर दिया जाए।
अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई मेडिकल प्रयोग है।
हाँ, जिससे शायद लाखों लोगों को फायदा हो पर कुछ जानवरों को बहुत कष्ट सहना पड़े। उपयोगितावाद शायद इसकी इजाजत दे दे अगर कुल नतीजा सकारात्मक हो। रॉलिंस कहते हैं कि ये अधिकारों वाली सुरक्षा नहीं देता। अधिकार तो हरेक की रक्षा करते हैं, परिणाम चाहे जो भी हो।
समझ गया, तो उपयोगितावाद पर्याप्त नहीं है। फिर रॉलिंस का अपना प्रस्ताव क्या है? यहाँ वो रॉल्स को लाते हैं, अज्ञानता का पर्दा।
हाँ, और ये उनके तर्क का शायद सबसे मौलिक और अनोखा हिस्सा है। जॉन रॉल्स का वो विचार प्रयोग याद है?
हाँ, कि आप समाज के नियम बना रहे हैं पर एक पर्दे के पीछे से। आपको पता नहीं कि आप समाज में कौन होंगे, अमीर गरीब पुरुष महिला।
बिल्कुल, तो जाहिर है आप ऐसे नियम बनाएंगे जो सबके लिए निष्पक्ष हों, क्योंकि आप खुद किसी कमजोर स्थिति में हो सकते हैं।
हाँ, ताकि खुद के साथ अन्याय ना हो जाए।
अब रॉल्स कहते हैं, इस पर्दे को और मोटा कीजिए। कल्पना कीजिए कि आपको ये भी नहीं पता कि आप किस प्रजाति के सदस्य बनकर पैदा होंगे।
क्या मतलब?
मतलब आप इंसान भी हो सकते हैं, या गाय, या मुर्गी, या मछली, आपको कुछ नहीं पता। अब बनाइए समाज के नैतिक नियम।
अरे बाप रे, अगर ऐसा हो तब तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि जानवरों के शोषण की इजाजत हो, क्योंकि क्या पता अगली बार मैं ही।
हाँ, मैं ही वो मुर्गी हूँ फैक्ट्री फार्म में, है ना?
ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है।
बिल्कुल, रॉलिंस कहते हैं कि अगर हम वाकई निष्पक्ष होकर सोचें तो इस मूल स्थिति, ओरिजिनल पोजिशन से, इस अज्ञानता के पर्दे के पीछे से, हम सब ऐसे नियम चुनेंगे जो सभी संवेदनशील प्राणियों को बुनियादी सुरक्षा दे।
क्या सुरक्षा?
कम से कम ये कि उन्हें बेवजह नुकसान न पहुंचाया जाए और उन्हें सिर्फ साधन या वस्तु की तरह इस्तेमाल न किया जाए। और ये, रॉलिंस जोर देते हैं, ये कोई दया या दान नहीं होगा,
बल्कि
ये न्याय की मांग होगी, फेयरनेस की मांग।
लेकिन वो सवाल फिर आता है, अधिकार है तो कर्तव्य भी तो होने चाहिए, जानवर तो कोई कर्तव्य नहीं निभाते।
हाँ, ये आम आपत्ति है। रॉलिंस इसका जवाब देते हैं मॉरल एजेंट्स और मॉरल पेशेंस के बीच फर्क करके।
ये क्या है?
मॉरल एजेंट्स वो हैं जो सही गलत समझ सकते हैं, नैतिक जिम्मेदारी ले सकते हैं, जैसे हम वयस्क इंसान।
और मॉरल पेशेंट?
मॉरल पेशेंट्स वो हैं जिनके प्रति हमारे नैतिक कर्तव्य हैं, भले ही उनके अपने कर्तव्य न हो।
जैसे?
जैसे छोटे बच्चे या वो लोग जो गंभीर मानसिक अक्षमता के कारण नैतिक निर्णय नहीं ले सकते। हम मानते हैं ना कि उनके प्रति हमारे कर्तव्य है।
हाँ बिल्कुल, उनकी देखभाल करना, उन्हें नुकसान न पहुँचाना।
तो रॉलिंस कहते हैं बहुत से जानवर भी इसी नैतिक रोगी की श्रेणी में आते हैं। वो महसूस करते हैं उनके अपने हित हैं, इसलिए हमारे उनके प्रति कर्तव्य हैं और उनके अधिकार हो सकते हैं, भले ही वो हमारे जैसे कर्तव्य ना निभा सके।
ये फर्क मददगार है। तो इन सब विचारों का प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ? फैक्ट्री फार्मिंग, पशु प्रयोगों पर उनका क्या रुख है?
वो इन पर बहुत सख्त रुख अपनाते हैं। फैक्ट्री फार्मिंग को वो एक तरह का संस्थागत अन्याय मानते हैं, जहां जानवरों को सिर्फ उत्पादन की इकाई समझा जाता है,
मशीन की तरह।
हाँ, उनकी पीड़ा, उनकी जरूरतें सब नजरअंदाज कर दी जाती हैं। पशु प्रयोगों पर भी वो बहुत सवाल उठाते हैं, खासकर जब वो सिर्फ कॉस्मेटिक्स या मामूली फायदों के लिए हों। उनका तर्क है कि ये जानवरों को सिर्फ एक साधन मानता है, अपने आप में एक साध्य नहीं हो रही। हाँ, वो मानते हैं कि अच्छे संरक्षण केंद्र या अभयारण्य ठीक हो सकते हैं।
जंगल में शिकार का क्या? शेर ज़ेब्रा को मारता है, उसका क्या करें?
रॉलिंस कहते हैं कि हमारा पहला कर्तव्य नकारात्मक है, यानी हमें जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। प्रकृति में जो हो रहा है उसमें हर जगह दखल देना न तो हमारा काम है न ही संभव।
अच्छा, मतलब हमारा बनाया हुआ अन्याय रोकना ज्यादा जरूरी है।
हाँ, फैक्ट्री फार्मिंग या बेवजह के प्रयोग प्रकृति का हिस्सा नहीं है, ये हमारे द्वारा किए गए अन्याय है।
ठीक है, तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटें, कुछ मुख्य बातें क्या निकलती हैं? मेरे लिए पहली और सबसे बड़ी बात तो यही है कि पशु अधिकार सिर्फ मतलब इमोशनल चीज नहीं है, ये न्याय का सवाल है।
बिल्कुल, जस्टिस ऑफ फेनेस का। दूसरी बात वो प्रजातिवाद वाली, कि सिर्फ अपनी प्रजाति को बेहतर मानना बिना किसी ठोस नैतिक कारण के, ये तार्किक नहीं है।
जैसे नस्लवाद या लिंगवाद अतार्किक है।
हाँ, और तीसरा वो अज्ञानता का पर्दा वाला विचार, वो वाकई सोचने का नजरिया बदल देता है, आपको मजबूर करता है कि आप निष्पक्ष होकर सोचें। चौथा वो नैतिककर्ता और नैतिक रोगी का अंतर, ये समझने में मदद करता है कि बिना कर्तव्य के भी अधिकार कैसे हो सकते हैं।
और पांचवा?
पांचवा ये कि जानवरों को सिर्फ हमारे इस्तेमाल की चीज, एक साधन, इंस्ट्रूमेंट समझना गलत है। उनका अपना जीवन है, उनके अपने हित हैं, उन्हें एक व्यक्ति की तरह देखना चाहिए न कि वस्तु की तरह।
किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां या विचार हैं जो खास तौर पर याद रह जाते हैं?
हाँ, कई हैं। जैसे एक विचार ये है कि सवाल ये नहीं कि जानवर हमारी तरह सोचते हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या उनमें वो गुण है जो नैतिक अधिकार का आधार बनते हैं।
यानी महसूस करने की क्षमता।
हाँ, संवेदनशीलता। समानता जरूरी नहीं, प्रासंगिकता जरूरी है।
और
एक और, प्रजातिवाद भी नस्लवाद और लिंगवाद की तरह ही नैतिक दायरे को मनमाने ढंग से सिकोड़ना है, ये बार बार वो जोर देते हैं। हाँ, इस पर
एक और विचार जो कांट की याद दिलाता है, आपने कहा था।
हाँ, किसी ऐसे जीव को जिसका अपना जीवन और हित हो, उसे सिर्फ अपने लक्ष्यों का साधन समझना बुनियादी अन्याय है।
ये बहुत गहरा है।
और एक ये भी कि सबूत का बोझ किस पर होना चाहिए, वो कहते हैं सबूत इस बात का नहीं देना कि जानवर नैतिक दायरे में क्यों है, बल्कि इस बात का देना चाहिए कि उन्हें बाहर क्यों रखा जाए।
मतलब डिफॉल्ट ये होना चाहिए कि वो शामिल हैं।
बिल्कुल। और आखिर में एक बड़ी तस्वीर दिखाते हुए वो कहते हैं, एक प्रजाति के रूप में हमारी नैतिक तरक्की इस बात से मापी जा सकती है कि हम कितने और तरह के जीवों को अपने नैतिक समुदाय में शामिल करते हैं।
वाह, तो ये सब दार्शनिक बातें हैं, लेकिन इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? कोई कैसे इन्हें अपना सकता है?
सबसे सीधा असर तो शायद हमारे भोजन पर पड़ता है। रॉलिंस के तर्क हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि जो मांस, डेयरी, अंडे हम खा रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं।
क्या हम एक ऐसी व्यवस्था का हिस्सा बन रहे हैं जो जानवरों पर अत्याचार करती है?
हाँ, तो ये हमें शाकाहार या वीगनिज्म के बारे में सोचने को प्रेरित कर सकता है, और सिर्फ सेहत के लिए नहीं बल्कि न्याय के नैतिक आधार पर।
और खाने के अलावा?
अपनी खरीदारी में। क्या हम ऐसे उत्पाद इस्तेमाल कर रहे हैं जिन पर जानवरों पर परीक्षण हुआ है? क्या हम चमड़ा या फर पहन रहे हैं? क्या हम ऐसे मनोरंजन में शामिल हो रहे हैं जहां जानवरों का इस्तेमाल होता है?
तो ये हमें ज्यादा जागरूक उपभोक्ता बनने में मदद कर सकता है।
बिल्कुल। और ये सिर्फ मुझे जानवर प्यारे लगते हैं से आगे की बात है, ये एक तर्क पर आधारित नैतिक चुनाव है।
और समाज के स्तर पर?
समाज के स्तर पर ये हमें उन कानूनों और नीतियों का समर्थन करने के लिए बौद्धिक आधार देता है जो जानवरों की सुरक्षा बढ़ाते हैं, जैसे फैक्ट्री फार्मिंग को रेगुलेट करना या पशु परीक्षण के विकल्प ढूंढना,
या जानवरों को कानूनी तौर पर सिर्फ संपत्ति न मानकर उन्हें कुछ अधिकार देना।
हाँ, जैसे कुछ जगहों पर लीगल पर्सनहुड की बात चल रही है संवेदनशील जानवरों के लिए, ये उन प्रयासों को समझने में मदद करता है।
मेरे लिए इस पूरी बातचीत से जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो यही है कि रॉलिंस ने कितनी मजबूती से पशु अधिकारों को न्याय और निष्पक्षता से जोड़ा है। ये सिर्फ भावनाओं की बात नहीं रह जाती।
सही कहा। और मेरे लिए वो अज्ञानता के पर्दे को प्रजातियों तक ले जाना, वो विचार सच में हिला देता है। वो आपको अपनी जगह से हटाकर सोचने पर मजबूर करता है। अगर तुम कोई भी हो सकते थे तो तुम क्या चाहते? ये याद दिलाता है कि नैतिक प्रगति का मतलब ही अक्सर अपनेपन के दायरे को बढ़ाना होता है। पर ये एक मुश्किल सवाल भी छोड़ जाता है ना?
क्या?
कि अगर रॉलिंस का तर्क सही है तो हमारे जीने का, हमारी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा क्या अन्याय पर आधारित है, और उसे बदलने के लिए हम कहाँ तक तैयार हैं? ये सोचने वाली बात है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एनेत्रा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।